आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनम है और आज हम लोग आपकी विस्टास का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है एवांस ट्राइज एन ओ लेवल, और इसे लिखा है कॉलिन डेक्स्टर ने। तो सबसे पहले मैं आपको कॉलिन डेक्स्टर के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ। कॉलिन डेक्स्टर जो है वो एक इंग्लिश राइटर है, यानी उनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। सो ये पर्टिकुलरली अपनी जो एक फेमस इनकी सीरीज है इंस्पेक्टर मोर्स, इसके लिए वो काफी जाने जाते हैं, और इनफैक्ट उनकी ये जो नॉवल है ना उसको अडेप्ट भी किया गया था सीरियल में। सो इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी उनकी नॉवल पे बेस्ड है, जिसका नाम है अगेन इंस्पेक्टर मोर्स, और ये काफी फेमस सीरियल रहा था वहां पे। और ये अक्सर ही क्राइम पे लिखते हैं, इनका जो सब्जेक्ट होता है इनकी बुक्स का, इनकी नॉवेल्स का, वो क्राइम होता है। और इसी वजह से आज जो चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, ये भी एक प्रिजनर की कहानी है, और वो ऐसा प्रिजनर जो कि ऑलरेडी 3 बार जेल से भाग चुका है। सो इस बार भी क्या वो ऐसा ही कुछ प्लान कर रहा है और क्या वो कामयाब होता है, आइए चलिए साथ में देखते हैं। सो ये चैप्टर जो है वो एक प्ले के फॉर्मेट में है, और जहाँ पे हम लोगों को कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जैसे कि द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफर्ड, जेम्स इवांस अ प्रिजनर, मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर, मिस्टर स्टीफन्स अ प्रिजन ऑफिसर, द रिवरेंड S. मैक्लेरी एन इन्विजिलेटर, मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। All the precautions have been taken to see to it that the O-level German examinations arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. So, जितने भी बंदोबस्त हुए हैं वो सारे यही देखते हुए हैं कि अब Evans को कोई नया मौका नहीं देना है ताकि वो वहां से भाग सके। और occasion क्या है, बहाना क्या है Evans के पास, कि उसे German का यानी जर्मन लैंग्वेज का एग्जाम देना है, और उसके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट हुआ है ताकि वो कहीं से भागे नहीं। इस वजह से ये एग्जाम जो है कहाँ कंडक्ट हो रहा है, खुद उसी के जेल में कंडक्ट किया जा रहा है। इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव द कॉल फ्रॉम ऑक्सफर्ड प्रिजन। इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प जस्ट द वन फेलो, यू से That's it? Chap, called Evans. Started night classes in O-levels German last September. Says he has dead keen to get some sort of academic qualification. Is he any good? He was the only one in the class, so you can say he's had individual tuition all the time, really. Would have cost him a packet if he had been outside. Well, let's give him a chance, shall we? That's jolly kind of you. What's exactly the procedure now? Oh, don't worry about that. I'll be sending you all the forms and stuff. What's his name, you say? Evans? James Roderick Evans. It sounded rather grand. Just one thing, Governor. He's not a violent sort of fellow, is he? I don't want to know this criminal record or anything like that. But no, there's no record of violence. Quite a pleasant sort of chap, they tell me. Bit of a card, really. One of the stars at the Christmas concert. Imitations, you know, the sort of things. Mike Yarwood stuff. No, he's just a congenital kleptomaniac. That's all. The governor was tempted to add something else, but he thought better of it. He would look after that particular side of things himself. Presumably, said the secretary. You can arrange a room where... no problem. He is in a cell on his own. If you have no objections, he can sit the exam in there. That's fine. And we could easily get one of the persons from St. Mary Max to invigilate. If that's fine, yes. They seem to have a lot of persons there, don't they? The two men chuckled good-naturedly, and the secretary had a final thought. At least there's one thing, you shouldn't have much problem keeping him incommunicado, should you? The governor chuckled politely once more, reiterated his thanks, and slowly cradled the phone. Evans. So, ये कहानी जो है शुरू होती है किसके बीच की कॉन्वर्जेशन से? गवर्नर की और जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से थे उनके बीच में। तो ये जो गवर्नर होता है प्रिजन का, वो सेक्रेटरी से पूछता है कि हमारे पास एक ऐसा प्रिजनर है जो कि 6 महीने से जर्मन के लेसन्स ले रहा है और अब जो है वो चाहता है कि उसके पास कुछ भी एक अकेडमिक क्वालिफिकेशन कहलाने के लिए, यानी थोड़ा पढ़ा लिखा कहलाए, उसके पास कुछ डिग्री हो, ये उसकी ख्वाहिश है। और आई थिंक कि हम लोग इसको अगर प्लान करें तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सो जब सेक्रेटरी पूछता है कि क्या वो एक अच्छा स्टूडेंट है, तब गवर्नर उसको बताता है कि वो अकेले ही पढ़ रहा है और ऑफकोर्स अकेले पढ़ रहा है तो सारा जो ध्यान होता है टीचर का वो उस पर ही होता है और काफी अच्छा कर रहा है। सो अब जो सेक्रेटरी था उसको ये बात की भी गारंटी चाहिए थी कि कहीं वो कोई खून खराबे वाला क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं वो जो है किसी की जान लेने पे ना तुल जाए, ऐसा कुछ। तो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो इनफैक्ट काफी अच्छा है और काफी एंटरटेनिंग भी है। इनफैक्ट जो कि क्रिसमस कॉन्सर्ट होता है जेल का, उस पर उसकी काफी डिमांड भी रहती है क्योंकि वो मिमिक्री करता है और सबको काफी एंटरटेन करता है। बस एक ही बात है कि वो कॉन्जेनिटल क्लिप्टोमेनियाक है। कॉन्जेनिटल मतलब होता है बाय बर्थ। तो क्लिप्टोमेनिया की एक ऐसी कंडीशन होती है, क्लिप्टोमेनिया इनफैक्ट वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहां से आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो कुछ चीजें चुराने के लिए, और ये जो है उसको बाय बर्थ है। तो उसका नाम पूछता है वो, तो बोलता है कि उसका नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। और फिर ये लोग जो है आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये नहीं है। देन फाइनली ये लोग आते हैं इस बात पे कि ठीक है, हम लोग उसके लिए एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा लेते हैं और कुछ हम लोग इन्विजिलेटर्स वहां पे भेज देंगे सो दैट के कोई वहां पे कोई मिसचीफ ना हो या फिर वो कहीं वापस भागने की कोशिश ना करे, ये हम लोग सतर्क रहें। इवांस द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर कॉल्ड हिम थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन एंड बट फॉर द रीसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स अप नॉर्थ ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफर्ड and the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. Not that Evans was a real burden, just a persistent nagging presence. He would be all right in Oxford though. The governor would see to that, would see to it personally. And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. Just a slight possibility. Just a very slight possibility. At 8:30 p.m. on Monday, 7th June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D Wing. Guten Glück, Evans. Pardon? I said, good luck for tomorrow. Oh, thanks, I mean, danke schön. You haven't a cat in hell's chance of getting through, of course, but I may surprise everybody, said Evans. At 8:30 the following morning, Evans had a visitor. Two visitors, in fact. He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully. Morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor. Jackson was the senior prison officer on D Wing, and he and Evans had already become warm enemies. At Jackson's side stood Officer Stephens, a very slurry-looking man, only recently recruited to the profession. Jackson nodded curtly. And how's our little Einstein this morning, then? Wasn't a mathematician, Mr. Jackson? I think was a Jew, Mr. Jackson. Ivan's face was unshaven, and he wore a filthy-looking red and white bobble hat upon his head. Give me a chance, Mr. Jackson. I was just going to shave when you burst in. So again, Evans जो है वो कितनी बार भाग चुका था जेल से? 3 बार भाग चुका था, और इस वजह से उसका नाम पड़ गया था Evans the Break, यानी Evans एक भगोड़ा, भगोड़े के नाम से वो फेमस हो गया था। तो उसको इतनी बार वो भाग चुका था, और एक तरह से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गवर्नर के घर में, उसके प्रेमिसेस में वो अलाउड नहीं था। और गवर्नर को वो कुछ ऐसा नहीं था कि वो उसको ना पसंद था, बस वो उसके प्रेजेंस में थोड़ा अपने आप को अनकंफर्टेबल पाता था, क्योंकि वो कब क्या कर दे भागने के लिए, कब क्या चुरा ले, वो किसी को भी पता नहीं रहता था। एनीवे, लेकिन खुद गवर्नर ने जो है वो एवांस को तैयार किया था एग्जाम देने के लिए, है ना। तो वो नहीं चाहता था कि वो डिसअपॉइंट करे एवांस उसको, और उसे कहीं ना कहीं ये लगा था, एक पॉसिबिलिटी लग रही थी कि हो सकता है कि एवांस जो है वो सच में जेन्युइनली ओ लेवल में इंटरेस्टेड हो, लेकिन इसका भी चांस जो है वो बहुत कम है, बहुत से भी बहुत कम है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। सो अब एग्जाम को स्टार्ट होना था 8:30 PM में, यानी रात को 8:30 बजे मंडे को 7 जून। तो अगेन जब गवर्नर जाने लगा तो उसने जर्मन में एवांस को ऑल द बेस्ट बोला, गुड लक बोला, और फिर एवांस समझा नहीं, क्योंकि ये क्या दिखाता है कि वो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसको बस एक कहीं ना कहीं वो बहाना ढूंढ रहा था, तो वो पहली बार में समझा नहीं। फिर गवर्नर ने वापस बोला कि मेरा मतलब है गुड लक फॉर टुमारो, तो उसने जो है वो थैंक यू बोला, वो भी जर्मन में। और उसके बाद फिर जो है वो कमेंट करते हुए गवर्नर उसको कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि एक रत्ती बराबर भी चांस है कि तुम ये एग्जाम पास कर सको। लेकिन एवांस कहता है कि हो सकता है कि मैं पास कर दूं, कर जाऊं इस एग्जाम में और सबको हैरान छोड़ दूं। एनीवे, सो अब 8:30 बजे जो है उसकी सेल में, जो उसकी जेल थी उसमें दो लोग आते, और वो दो लोग कौन थे, मिस्टर जैक्सन और ऑफिसर स्टीफन्स। सो अगेन ये जो दोनों ऑफिसर थे वो जेल के ही थे, और मिस्टर जैक्सन जो है वो काफी पुराने थे, और उन दोनों में जो है यानी एवांस में और मिस्टर जैक्सन में दुश्मनी भी थी, और वो लोग आप देखोगे एक तरह एक दूसरे पे काफी ज्यादा तीखे कमेंट्स करते। तो मिस्टर जैक्सन जहाँ जो है वो उसे कहते हैं लिटिल आइंस्टाइन बुलाते हैं, उसे मॉक करते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि अच्छा तुम तैयार हो मेरे लिटिल आइंस्टाइन। तो फिर जो है वो मिस्टर जैक्सन को वो उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि लेकिन मुझे तो लगा था कि वो एक मैथमेटिशियन है और वो एक ज्यू है, और मैं उन दोनों में से जो हूँ कुछ भी नहीं। सो अगेन फिर जो है जो ऑफिसर स्टीफन्स है वो जो है अभी अभी अपॉइंट किए गए हैं, वो काफी नए हैं, और इस वजह से उन्हें एवांस के बारे में उतना ज्यादा कुछ पता नहीं। और एवांस की हुलिया कैसी है, उसने ना शेव कर रखी है, उसके कपड़े काफी गंदे हैं, और उसकी हैट भी जो है वो अजीब सी। और मिस्टर जैक्सन फिर से उसे कहते हैं कि तुम इतने अजीब लग रहे हो, आई थिंक तुम्हें अपनी हैट उतार देनी चाहिए, और इस गंदी हालत में तुम एग्जाम देने जाओगे। तब जो है वो वापस से बोलता है कि अरे मुझे मौका तो दो, और मैं जो आपके आने से पहले बस शेव ही करने जा रहा था। विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन टर्न्ड हिज आईज ऑन स्टीफन्स, मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज, क्लियर, one of these days he'll do us all a favor and cut his bloody throat. For a few seconds Evans looked thoughtfully at the man standing rammed straight in front of him, a string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Mr. Jackson, was it you who took my nail scissors away? Evans had always worried about his hands. And your nail file too. Look, for a moment Evans' eyes smoldered dangerously, but Jackson was ready for him. Orders of the governor, Evans. He leaned forward and leaned his voice dropping to a harsh, contemptuous whisper. You want to complain? Evans shrugged his shoulders lightly. The crisis was over. You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. Me? Hat? Ugh. Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen and smiled sadly. Do you know, Mr. Jackson, it's the only thing that's ever brought me any sort of good luck in life. Kind of lucky charm, if you know what I mean. And today I thought, well, with me exam and all that, buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion, and Evans knew it. So, फिर जो है वो जैसी जो है वो कहता है, एवांस कहता है कि आपके आने से पहले मैं जो हूँ शेव करने ही वाला था। तब जो है उससे जैक्सन को याद आता है, और वो स्टीफन्स को कहता है कि जब ये शेव कर ले तो इसका रेजर भी इसे छीन लेना, क्योंकि क्या पता ये एक दिन जो है अपना गला काट ले इस रेजर से। तो फिर एवांस जो है वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और कहता है कि वो तुम ही थे ना जिसने मेरे नेल कटर भी रख लिए थे। और मिस्टर जैक्सन कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा नेल कटर ही नहीं बल्कि तुम्हारा नेल फाइलर भी मैंने ही रखा था, और अगर तुम्हें कुछ कंप्लेन करनी है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि ये ऑर्डर्स जो है वो खुद गवर्नर के हैं। और इवांस जो है कुछ नहीं कह पाता है इस बात पे, क्योंकि उसे पता था कि गवर्नर के ऑर्डर पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर जो जैक्सन होता है उसको कहता है कि तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुम अपने आप को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लो, अपनी शेव वेव करनी है तो कर लो, और प्लीज ये जो तुम्हारी गंदी सी हैट है इसको प्लीज उतार दो। तब इवांस क्या कहता है, वो कहता है मिस्टर जैक्सन को कि तुम्हें पता है ये एक हैट ही मेरे पास है, ये एक ऐसी ही चीज है बस, मेरे पास एक लौती चीज जो मेरे लिए कभी ना कभी गुड लक लेके आती है, यानी ये एक तरह की मेरी लकी चार्म है। और आज क्योंकि मेरा एग्जाम है तो मैंने सोचा कि मैं ये वाली कैप पहन लेता हूँ, ये हैट पहन लेता हूँ। और इवांस को अच्छी तरह से पता था कि जैक्सन जो है वो थोड़ा इमोशनल टाइप का इंसान है और उसके दिल में कुछ तो हमदर्दी है ना, कुछ इंसानियत है, और इस वजह से वो इवांस उस चीज को यूज कर रहा था। जस्ट दिस वंस देन शर्ली टेंपल, इफ देयर वाज वन थिंग दैट जैक्सन जेन्युइनली लॉट अबाउट इवांस, इट वाज हिज लॉन्ग वेवी हेयर एंड गेट शेविंग एट 1845, द सेम मॉर्निंग दैट रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कारफैक्स। The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long black overcoat and a shallow crown clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. In his right hand, he was carrying a small brown suitcase which contained all that he would need for his morning duties, including a sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examinations board, a paper knife, a Bible. He was to speak to the Women's Guild that afternoon on the Book of Ruth, and a current copy of the Church Times. The two-hour examination was scheduled to start at 9:15 a.m. Evans had lathered his face vigorously when Stephens brought his two small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. Next, Stephens brought in two hard chairs, the slightly less battered on which he placed in front of the table which stood nearer the cell door. Jackson put in a brief final appearance. "Behave yourself, laddie." Evans turned and nodded. "And these?" "Off." Jackson pointed to the pin-ups. Evans turned and nodded again. "I was going to take them off anyway." "A minister, isn't he? The chap coming to sit in, I mean?" "And how did you know that?" asked Jackson quietly. "Well, I had to sign some forms, didn't I? And I couldn't help." Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white leather. "Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did they have to bug me in the cell?" He nodded his head vaguely to a point above the door. "Not a very neat job," conceded Jackson. They don't honestly think I'm going to try to." "They're taking no chances, Evans. Nobody in his senses would take any chance with you." सो अब हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे इन्विजिलेटर हैं, और वो कौन थे, वो एक चर्च मैन थे, है ना, एक चर्च से आ रहे थे इन्विजिलेशन के लिए, जिनका नाम था स्टुअर्ट मैक्लेरी, और वो जो है अपने घर से चलते हैं 8:45 में। और उस दिन की वेदर रिपोर्ट कुछ इस तरह थी कि उस दिन जो है हो सकता है कि बारिश हो, और इस वजह से उन्होंने कैप पहनी हुई थी, और वो कैप कौन सी थी, वही जो कि चर्च वाले लोग पहनते हैं। और उनके हाथ में जो है वो एक सूटकेस था ब्राउन कलर का, जिसमें क्या चीजें रखी थी, वहां पे एक सील्ड क्वेश्चन पेपर था, उसका एनवलॉप था, फिर एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था, एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड था, मतलब एक आईडी कार्ड था उनके पास, एक पेपर नाइफ थी, और एक बाइबल थी, क्योंकि उन्हें जो है दोपहर को बोलना था विमेन्स गिल्ड में जाकर के, और इस वजह से उन्होंने अपने साथ बाइबल रखी हुई थी बुक ऑफ रथ के बारे में। और उसके बाद उन्होंने चर्च टाइम्स का एक करंट कॉपी यानी फ्रेश कॉपी रखी हुई थी। और ये एग्जामिनेशन कितने देर का होने वाला था, 2 घंटे का होने वाला था, और ये शुरू कब होता, 9:15 में। अब जब इवांस जब शेव कर रहा था, वो अपने चेहरे पे फोम लगा रहा था, तभी जो है स्टीफन्स है वो आकर के क्या रखता है, वो दो चेयर रखता है और दो टेबल्स रखता है। और फिर जैक्सन आता है और वो क्या बोलता है, उसको बोलता है कि प्लीज एवांस अच्छी तरीके से बिहेव करना। और वो जो है उसके दीवार पर जो लगे हुए कुछ पोस्टर्स होते हैं वो कहता है कि और ये सारे पोस्टर्स नहीं दिखने चाहिए मुझे, ये सारे को उतारो। तो एवांस कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो इनफैक्ट इतने खुद ही उतारने वाला था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जो है वो इंसान जो इन्विजिलेशन के लिए आने वाला है वो चर्च से आने वाले हैं, तो ये सारे पोस्टर्स उनके सामने तो नहीं चलेंगे, मुझे भी पता है। तो जैक्सन जो है हैरत से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो एक चर्च से आने वाला है। तब एवांस बोलता है कि सुबह मैंने कुछ फॉर्म साइन किए हैं और तभी मैंने नोटिस किया। उसके बाद एवांस अपनी दाढ़ी बनाने में लग जाता है और फिर जो है वो मिस्टर जैक्सन से एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते और मुझे इस तरह से परेशान क्यों करते हो। और उसके बाद ये कहते हुए उसने दीवार की तरफ इशारा किया जहां पे क्या था, माइक्रोफोन्स लगे हुए थे। तो तभी जो है मिस्टर जैक्सन कहते हैं कि हाँ लेकिन इन लोगों ने ढंग से काम नहीं किया क्योंकि तुमने जो है उसको ईजिली देख लिया। तो फिर से एवांस जो है कहता है कि क्या उन्हें सच में मुझ पर भरोसा नहीं है और इस वजह से ये सारी हरकतें कर रहे हैं। तब ऑफकोर्स जैक्सन बोलते हैं कि कौन अपने सही दिमाग में तुम पे ट्रस्ट करेगा एवांस, तुम ऑलरेडी 3 बार भाग चुके हो और कोई भी तुम्हारे साथ किसी भी तरह का चांस नहीं ले सकता है, इस वजह से हर तरह के सिक्योरिटी मेजर्स तुम्हारे साथ लिए जा रहे हैं। हु इज गोइंग टू लिसन इन, आई विल टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन लैरी, इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ, सी ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच एंड नॉट डू आई, आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक एवांस, so keep your nose clean, clear? He walked towards the door. Evans nodded. He had already thought of that, and number 2 handkerchief was lying ready to the bunk, a neatly folded square of off-white linen. Just one more thing, Einstein. Yeah, what's that? Good luck, old son. In the little lodge just inside the prison's main gates, the Reverend S. McLary signed the name neatly in the visitor's book and then walked side by side with silent prison officer across the exercise yard to D wing, where he was greeted by Jackson. The wing's heavy outer door was unlocked and locked behind them, the heavy inner door the same, and McLary was handed into Stephen's keeping. Get the razor, murmured Jackson. Stephen nodded. Well, keep your eyes skinned, clear? Stephen nodded again, and McLary, his feet clanging up in the iron stairs, followed his new guide and finally stood before a cell door where Stephens opened the peephole and looked through. That's him, sir. Evans, facing the door, sat quietly at the farther of the two tables. His whole attention reverted to a textbook of elementary German grammar. Stephens took the key from its ring and the cell lock sprang back into a thudded metallic twang. अब एवांस ने माइक्रोफोन तो स्पॉट कर लिया था, फिर वो जैक्सन से पूछता है कि लेकिन मैं हमारी बातें जो भी इस सेल में होंगी वो बातें सुनने कौन वाला है। तो जैक्सन बोलता है कि मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि ये बातें कौन सुनने वाला है, और ये कोई और नहीं, खुद गवर्नर ही तुम्हारी सारी बातें सुनने वाला है, क्योंकि वो तुम पे एक पैसे का भी भरोसा नहीं करते और मैं भी तुम्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, इस वजह से मैं तुम पे बिल्कुल चील की नजर रखने वाला हूँ, तुम जो भी कुछ करोगे मैं तुम्हें बिल्कुल नोटिस करूंगा। अब फिर जैक्सन जो है उसे कहते हैं कि प्लीज अपने रिकॉर्ड्स बिल्कुल क्लियर रखना और हमें कोई भी मौका मत देना, और उसके बाद फिर वो उसे टोकते हैं। तो फिर एवांस बोलता है कि अब क्या है, तो उसे बोलते हैं ऑल द बेस्ट। उसके बाद जो मैक्लेरी जो इन्विजिलेशन के लिए आने वाले थे वो आ चुके हैं, और आप देखोगे कि इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि एवांस को कितने अंदर वाले सेल में रखा गया था, है ना। पहले एक बड़ा दरवाजा खुलता है, फिर अंदर का एक वैसे ही बड़ा सा मजबूत लोहे का दरवाजा खुलता है, और अंदर अंदर जाते सबसे पहले जो है वो मैक्लेरी को कौन ग्रीट करता है, जैक्सन ग्रीट करता है, और उसके बाद जब इनर सेल में जाता है वो, तब वहां से उसको स्टीफन्स जो है वो आगे की तरफ लेके जाता है, किसके सेल में, एवांस के सेल में। और उसके बाद फिर जब जैक्सन स्टीफन को देखता है तो कहता है कि याद रखना तुम्हें उससे उसका रेजर ले लेना है। तब स्टीफन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और उसके बाद कहता है कि उससे बिल्कुल होशियार रहना, वो कुछ भी कर सकता है। खैर फिर स्टीफन जो है वो मैक्लेरी को उसके सेल तक लेके जाता है, वो पीप होल से यानी जो एक आई होल होता है उससे वो देख के कहता है कि यही वो इंसान है सर जिसे एग्जाम देना है, और आप जो है वो थोड़ा केयरफुल खुद भी रहिएगा। और इवांस को जो है हम लोग देख सकते हैं कि वो जो है वो दरवाजे से दूर हटके बैठा हुआ है अपनी जर्मन की ग्रामर बुक के साथ, और वो पढ़े जा रहा है। और स्टीफन पापा से चाबी लेता है और उसके जो सेल, उसका जो जेल होता है कमरा, उसको वो खोलता है और उसके बाद वापस बंद कर देता है। इट वॉज 9:10 AM when the governor switched on the receiver. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution. That was only fair, as if Evans wouldn't spot it. But wasn't it all a bit theoretical? Schoolboyish almost? How on earth was Evans going to try anything on today? If he was so anxious to make another break, why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? Much easier. But he hadn't. And there he was now, sitting in a locked cell, all the prison officers on the alert, two more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as a haystack. Yes, Evans was as safe as houses. Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. But still that tiny little nagging doubt. Might Evans try to take advantage of McLary? Get him to smuggle in a chisel or two or a rope ladder? Or the governor sat up sharply. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used. But what about McLary? What if, quite unwittingly, the innocent McLary had brought in something himself? A jackknife, perhaps? And what if Evans held him hostage with such a weapon? The governor reached for the phone. It was 9:12 AM. The examinee and the invigilator had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McLary through the cell door. Can you come outside a minute, sir? You too, Stephens. Jackson quickly explained the governor's worries, and McLary patiently held out his arms at shoulder level while Jackson lightly frisked his clothes. Something hard here, sir. My reading glasses, replied McLary, looking down at the spectacle case. Jackson quickly reassured him and, bending down on the land, thumb flicked the catches on the suitcase. So, ab exam jo hai wo kab start hone wala hai? 9:15 mein. So, जब 9:10 बज रहे थे सुबह के, तब गवर्नर ने वो रिसीवर यानी जो माइक्रोफोन उन्होंने फिट करवाया था वो ऑन किया, और फिर जो है उन्होंने जैक्सन को कहा कि जाकर के प्लीज इवांस को पहले से ही तुम वार्न कर दो कि उसके सेल में माइक्रोफोन लगे हुए और इस वजह से वो होशियार रहे, क्योंकि हम लोग हर कुछ उसका मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी सारी बातें जो है वो यहाँ रिकॉर्ड हो रही है और हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी जो गवर्नर था उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि आज वो क्यों करेगा, जबकि वो अपने खुद के सेल में है जहाँ से भागना बिल्कुल नामुमकिन सा है। अगर उसे भागना होता तो उस दिन जब वो डी ब्लॉक में था, जब वो रिक्रिएशनल ब्लॉक में था, तब वो वहां से भाग सकता था। लेकिन अभी जहाँ पे है वहां पे तो हर तरह के दरवाजे जो है अच्छी तरह से ताले से बंद है, और वहां की जो दीवार है वो काफी ऊंची है। और अब उसको इत्मीनान हो गया था कि इवांस जो है वो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन फिर भी अचानक से जो गवर्नर होता है उसको एक डाउट आता है कि ठीक है, इवांस के पास तो हम लोगों ने हर तरह की चेकिंग करवा ली, उसका रेजर भी हटवा लिया, लेकिन हो सकता है कि मैक्लेरी अपने डिफेंस में कुछ ऐसी चीज लेकर के आया हो जो कि इवांस उस पे ही यूज कर ले। तो इस वजह से गवर्नर जो है वो वापस से किसको भेजता है, जैक्सन को भेजता है, और कहता है कि प्लीज जाकर के मैक्लेरी को अच्छे से चेक करो कि कहीं उसके पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट ना निकल आए जिसका फायदा उठा करके इवांस उसे ही जो है वो बंदी बना ले। तो खैर यही होता है, वो मैसेज जो है वो सेल में भेजा जाता है, और स्टीफन और जैक्सन मिलकर के किसकी तलाशी लेते हैं, जो इन्विजिलेटर था मैक्लेरी उसकी तलाशी लेते हैं, और फिर जो है वो हर जो भी उसका सामान था वो बिल्कुल हर अच्छे से दबा दबा करके चेक करते हैं कि कोई ऐसी सामान ना निकल जाए। कुछ उन्हें मिलता है तो पूछते हैं कि ये क्या है, तो कहते हैं कि ये तो मेरे चश्मे हैं बस, और वो हर चीज चेक करते हैं तो ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। वो जो न्यूज़पेपर लेके आया था चर्च टाइम्स का, उसे भी काफी झाड़ झाड़ करके देखते हैं। लेकिन एक ही चीज थी जो कि मैकलरी की सूटकेस में ऐसी थी जो कि उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, और जो कि थोड़ी शक पैदा करने वाला सामान था। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ने ये चैप्टर अभी तक यहाँ तक देखा है। इसकी आगे की कहानी मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, और तब तक मैं आपसे कहूंगी कि जहां तक हम लोग ने पढ़ लिया है वहां तक आप वापस पढ़िए ताकि आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की डेवलप कर सके, और मैं आपको आगे की कहानी इसके नेक्स्ट पार्ट्स में बताऊंगी। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।